सुजीत कुमार की आवाज में बलवन के संबंध में रिकॉर्डिंग की जा रही है। बलवन का मूल्यांकन कीजिए या बलवन की महानता के दावे का परीक्षण कीजिए या बलवन की मंगोल नीति का वर्णन कीजिए या दिल्ली सल्तनत की सुदृढ़ीकरण के लिए बलवन के योगदान का मूल्यांकन कीजिए या सुल्तान बलवन की समस्याओं का वर्णन कीजिए तथा यह बताइए कि उसे उन्हें किस प्रकार सुलझाया। गुलाम वंश के शासकों में बलवन सर्वाधिक प्रसिद्ध समझा जाता है। उसी के अधीन दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ता प्रदान करने का काम संपन्न हुआ और दिल्ली सल्तनत एक शक्तिशाली और सुसंगठित राज्य के रूप में प्रकट हुई। बलवन के राजनैतिक जीवन का आरंभ 1232 में इल्तुतमिश के दास के रूप में हुआ। अपनी योग्यता और प्रतिभा के कारण वह जल्द ही पदोन्नति पाते हुए इल्तुतमिश के विश्वसनीय चालीसों के दल में शामिल हो गया और नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में 1246 में वह प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 20 वर्ष बाद 1266 में नसरुद्दीन की मृत्यु पर उसने सुल्तान का पद ग्रहण किया। राज्यारोहण के बाद बलवन के समाज अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगी। बलवन की समस्याएं, पहला, शासक की शक्ति एवं प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना, दूसरा, सामंतों पर अंकुश लगाना, तीसरा, आंतरिक विद्रोहों का दमन करना, चौथा, सीमांत की रक्षा हेतु नीति का निर्धारण करना, पांचवा, एक नए वंश की नींव डालना, छठा, साम्राज्य संगठन की समस्या, सातवां, उलेमा वर्ग के प्रभाव को कम करने की समस्या, आठवां, शांति एवं सुव्यवस्था का प्रश्न, नवां, मंगोल आक्रमण से सल्तनत की सुरक्षा, दसवां, आर्थिक समस्याओं को सुलझाना, ग्यारहवां, प्रशासन की समस्या। उपरोक्त सभी समस्याओं के समाधान हेतु शासन की शक्ति एवं प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना सर्वप्रथम जरूरी थी तथा नए वंश की नींव से भविष्य में इन समस्याओं को रोका जा सकता था। शासक की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए बलवन ने राजत्व का एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार शासक का पद अत्यंत महान और गौरवपूर्ण है। सम्राट ईश्वर का प्रतिनिधि स्वरूप है। इसकी आज्ञा का पालन ईश्वर की आज्ञा का पालन है। बलवन को विश्वास था कि सुल्तान की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ सामंतों की शक्ति पर अंकुश लगाना तथा उन्हें केंद्रीय प्रशासन के नियंत्रण में रखना अनिवार्य है। इसके लिए बलवन ने सामंतों की सैनिक शक्ति को नियंत्रित किया। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना की जिसे दीवाने अर्घ कहते हैं। बलवन ने सेना और गुप्तचरों का उपयोग किया, अपनी निरंकुश शासन प्रणाली के लिए पूरी सफलता से किया। बलवन ने चालीसा दल से संबंधित सामंतों का दमन किया क्योंकि पिछले शासनकाल में यही वर्ग राजनीतिक अस्थिरता के लिए उत्तरदायी था। इसने पुराने सामंतों को धीरे धीरे महत्वपूर्ण पदों पर से हटाना शुरू किया। इस प्रकार बलवन ने पुराने सामंतों को निःशक्त बना दिया जबकि नए सामंत उसी के द्वारा नियुक्त थे और पूर्ण रूप से उसी पर आश्रित थे। बलवन ने आंतरिक शांति और सुव्यवस्था की पुनर्स्थापना के लिए भी प्रयास किया। उसने अमरोहा और बदायूं क्षेत्र के राजपूतों सरदारों तथा द्वारा विद्रोही गतिविधियां का दमन किया और उसके प्रति क्रूर नीति अपनाई। सभी वयस्क पुरुषों को मृत्युदंड, स्त्रियों और बच्चों को दास बनाकर बेच दिया और सैनिक छावनियां स्थापित कर दी ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। बलवन की मंगोल नीति। सल्तनत की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर मंगोल के आक्रमण का सदैव भय बना रहता था। बलवन को भी अपने राज्य की रक्षा के लिए अनेक प्रयास किए। दिल्ली के सुल्तानों में वह पहला शासक था जिसने मंगोलों से देश की रक्षा के लिए एक सुनिश्चित योजना बनाई और दृढ़ता के साथ उसका पालन किया। मंगोलों का सामना सफलतापूर्वक करने के उद्देश्य से बलवन ने एक दृढ़ सेना का संगठन किया तथा उन्हें आधुनिकतम अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया। उन्हें उच्च कोटि के सैनिक प्रशिक्षण दिए गए और उन्हें अनुशासित भी किया गया। इस दृष्टि से अब सेना न सिर्फ बड़ी हो गई बल्कि अत्यंत कुशल, अनुशासित एवं स्वामी भक्त भी हो गए। पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा के उद्देश्य से सीमांत क्षेत्रों के दुर्गों का जीर्णोद्धार किया गया तथा इस क्षेत्र में अनुभवी एवं कुशल वीर सैनिक तथा सेनापति तैनात किए गए। बलवन ने अपने योग्य सेनापति शेर खां को सीमांत क्षेत्र का प्रशासक बनाया। वह निरंतर मंगोल से लड़ाई लेता रहा और उनके आक्रमणों को विफल करता रहा। 1270 में शेर खां की मृत्यु उपरांत उसने सीमांत क्षेत्रों को दो भाग में बांटकर उन्हें अपने दोनों पुत्रों को सौंप दिया। उसने बड़े लड़कों मोहम्मद को मुल्तान, सिंध, लाहौर के क्षेत्रों को दे दिया तथा समाना की देखभाल के लिए दूसरे लड़के को। 1285 में तैमूर खां के नेतृत्व में मंगोलों ने सीमांत क्षेत्र पर भयंकर आक्रमण किया और लाहौर को रौंद डाला। शाहजादा मोहम्मद उनका प्रतिरोध करने के लिए आगे बढ़े, किंतु इस युद्ध में मोहम्मद की मृत्यु हो गई। बलबन अपने मृत्यु काल तक अपनी पश्चिमोत्तर सीमांतर नीति का दृढ़ता के साथ संचालन करता रहा। अपने लाखों प्रयत्नों के बावजूद बलबन पूर्ण रूप से मंगोलों पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। बलबन की उपलब्धियां: पहला, 40 गुलामों के गुट का दमन; दूसरा, तुर्क अमीरों की शक्ति का दमन; तीसरा, आंतरिक विद्रोहों का दमन; चौथा, सीमांत की रक्षा हेतु नए नीति का निर्धारण; पांचवा, निरंकुश शासन व्यवस्था की स्थापना; छठा, शासक की शक्ति एवं प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना; सातवा, बलवन की लौह और रक्त नीति का महत्व; सातवा, आठवां, उलेमा वर्ग के प्रभाव को कम करना; नौवां, शांति व्यवस्था कायम करना; दसवां, बलवन के राजत्व का सिद्धांत; ग्यारहवां, गुप्तचर विभाग का संगठन; बारहवां, न्याय व्यवस्था; तेरहवां, मध्य निषेध; चौदहवां, आर्थिक नीति; पंद्रहवां, धार्मिक नीति; सोलहवां, प्रशासनिक संगठन। उपरोक्त उपलब्धियों को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यह ज्ञात होता है कि बलवन ने अपने शासनकाल में हर पहलू पर ध्यान दिया। उसके अनुसार सम्राट ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसकी आज्ञा का पालन ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को निरंकुशता प्रदान किया। उसने आंतरिक विद्रोहों का दमन, सीमांत की रक्षा हेतु नए नीति निर्धारण, मध्य निषेध इत्यादि कार्यों को किया। इन सभी कार्यों के अलावा उसने एक महत्वपूर्ण कार्यों पर बल दिया। उनका अंतिम उद्देश्य अपने वंश को सुदृढ़ करना था। वह वंशानुगत उत्तराधिकार की परंपरा स्थापित करना चाहता था, मगर इसमें वह असफल रहा। बलवन का व्यक्तित्व एवं उसके कार्यों का मूल्यांकन। बलवन का महत्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक विजेता से कहीं अधिक एक संगठनकर्ता के रूप में है। वह एक कुशल शासक था। उसका मुख्य उद्देश्य हिंदुस्तान में नव स्थापित तुर्की सुल्तान को संगठित करना था। निसंदेह सुल्तान को इस कार्य में काफी सफलता मिली। उसने ताज की शक्ति, गौरव तथा प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि की और जनता, अमीर सरदार एवं अधिकारी गणों की अपनी आज्ञाएं मनवाने के लिए बाध्य किया। उसने देश में शांति व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य से लौह और रक्त की क्रूर नीति अपनाई। उत्तर से पश्चिमी क्षेत्र पर मंगोल निरंतर आक्रमण कर रहे थे तथा देश में आतंक, अशांति, अव्यवस्था और उत्पाद मचा रखा था। सर्वप्रथम उसने कठोर हाथों से विद्रोहियों एवं विरोधियों का दमन किया। आलोचकों ने इस कार्य के लिए बलवन को निर्दयी और बर्बर कहा। वस्तुतः उसकी कठोर नीति की आलोचना करते समय यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिस कठोरता की नीति का उसने पालन किया वह उस युग की मांग थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि बलवन एक निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासक था। उसकी आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता था। फिर भी सुल्तान व्यक्तिगत रूप से सहृदय और दयालु था। बलवन की योग्यता निसंदेह के परे समझी जाती है। वह अपनी योग्यता के बल पर दास के निम्न स्तर से पदोन्नति करके भारत का सम्राट बन बैठा। उसने अपनी योग्यता के बल पर ही ताज के पद प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि की। बलवन एक वीर सैनिक और योग्य सेनापति था। अपनी सैनिक योग्यता के बल पर ही उसने विद्रोहियों एवं विरोधियों का दमन किया। उसने अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए सुसंगठित तथा विशाल सेना का निर्माण किया और अपने गुप्तचर विभाग को पुनर्संगठित किया। उसका उद्देश्य दिग्विजय नहीं था, वरन पूरे साम्राज्य का सुदृढ़करण था। शासन और समाज में नैतिकता को उन्नत करने के लिए बलवन ने मद्यपान निषिद्ध कर दिया। बलवन एक धर्मनिष्ठ सुन्नी मुसलमान था। वह प्रतिदिन नियमित रूप से नमाज पढ़ा करता था। उसमें अपेक्षाकृत कर्म कम धर्मांधता थी, फिर भी उसे भारतीय मुसलमानों, शियाओं और विशेष रूप से हिंदुओं से घृणा थी। हिंदुओं के प्रति उसकी नीति असहिष्णु थी और अनुदार थी। सेना, प्रशासन आदि में हिंदुओं का कोई भी स्थान प्राप्त नहीं था। वह साहित्य एवं विभिन्न कलाओं में विशेष अनुराग रखता था। वह स्वयं एक सुशिक्षित व्यक्ति था और विद्वानों की संगति उसे प्रिय थी। वह शिक्षा और विद्या का महान पोषक था। उसके दरबार में देश के बड़े बड़े चिकित्सक, साहित्यकार, कवि, ज्योतिषी, दार्शनिक, संत तथा गायक आदि रहते थे। इतिहास में बलवन का स्थान। बलवन ने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ करने का जो प्रयास किया वह उसकी योग्यता, राजनीतिज्ञ और प्रतिभा का परिचालक है। उसने दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण के महान ऐतिहासिक कार्य संपादित किया। उसकी सैन्य गुप्तचर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, आर्थिक नीति, राजत्व से संबंधी नीति, सीमांत नीति का संगठन उसकी मौलिक प्रतिभा के प्रतीक हैं। निरंकुश और स्वेच्छाचारी होते हुए भी उसने सदा प्रजा की भलाई की। वस्तुतः बलवन की नीति लौह एवं रक्त की होने के कारण आलोचकों ने निर्दयी कहा, किंतु उस युग में इस प्रकार की नीति का अनुसरण अनिवार्य था। बलवन और इल्तुतमिश की तुलना। गुलाम वंश के शासकों में इल्तुतमिश और बलवन की श्रेष्ठता संदेह के परे समझी जाती है। दोनों गुलाम वंश के शक्तिशाली शासक के रूप में सामने आते हैं। इतिहासकारों के बीच इनकी तुलनात्मक श्रेष्ठता और महानता के प्रश्न को लेकर मतभेद है। कुछ इतिहासकारों ने इल्तुतमिश को तो कुछ ने बलवन को दाश वंश का महान शासक माना है। समानता की दृष्टि से इल्तुतमिश और बलवन दोनों ही प्रारंभिक जीवन में दास थे। अपने राज्यारोहण के पश्चात दोनों सुल्तानों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत अंश में दोनों की समस्याएं समान थीं। तुर्क सरदारों तथा सामंतों के विद्रोह की समस्या, राजपूत के विद्रोह के दमन की समस्या, मंगोल आक्रमण से सुरक्षित तथा प्रशासनिक सुधारों और संगठन कार्यों की समस्याएं, इल्तुतमिश की समस्याएं थोड़ा जटिल थी। ये दोनों ही साधन संपन्न, दक्ष, साहसी, प्रतिभावान सुल्तान थे। दोनों समान रूप से साहित्य, ज्ञान विज्ञान, शिक्षा तथा विभिन्न कलाओं के महान पोषक थे तथा महत्वाकांक्षी शासक थे। इन्होंने प्रशासन में गहरी अभिरुचि दिखलाई। दोनों सफल शासक थे और दोनों ने प्रशासन के विभिन्न पक्षों में उल्लेखनीय परिवर्तन लाए। इल्तुतमिश बलवन की अपेक्षा बड़ा विजेता था, किंतु बलवन इल्तुतमिश की तुलना में अधिक कुशल प्रशासक और संगठनकर्ता था। फिर भी दोनों में रचनात्मक प्रतिभा की कमी थी। असमानता की दृष्टि से उपर्युक्त समानताओं के बावजूद दोनों सुल्तानों के मध्य अनेक विभिन्नताएं थीं। सिंहासन पर बैठते समय बलवन को प्रशासन एवं राजनीति का इल्तुतमिश से अधिक अनुभव प्राप्त था, क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में बलवन ही राज्य का वास्तविक शासक बना रहा। इल्तुतमिश बलवन की अपेक्षा एक बड़ा विजेता था। उसने अपने विजय अभियानों के द्वारा ऐबक के आरंभ किए हुए कार्यों को पूरा किया और बहुत से नए प्रदेशों को जीता। दूसरी ओर बलवन केवल षड्यंत्रों का दमन किया और मंगोलों के आक्रमण से राज्य की सुरक्षा की। अन्य बातों में भी असमानता थी। जैसे इल्तुतमिश सुंदर, सुडौल और आकर्षक आकृति का था, परंतु बलवन में इसका अभाव था। बलवन इल्तुतमिश की अपेक्षा ज्यादा कठोरता एवं निरंकुशता का परिचय दिया। अतः सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि बलवन की अपेक्षा इल्तुतमिश दास वंश का श्रेष्ठतर शासक था। इल्तुतमिश की उपरोक्त उपलब्धियां उसे महान बनाती है। बलवन का राजस्व संबंधी सिद्धांत। बलवन की दृढ़ धारणा थी कि राज शक्ति स्वभाव से ही निरंकुश है। प्रजा से शासकीय आज्ञा, राजकीय आज्ञाओं और आदेशों का पालन करवाने तथा राज्य को सुरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक है कि सुल्तान निरंकुश हो। उसके मत में राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिरूप होता है और उसका पद पवित्र होता है। इस प्रकार बलवन के दैव्य सिद्धांत में सम्राट की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता निहित थी। बलवन के राजत्व सिद्धांत का उद्देश्य एवं स्वरूप। नए राजत्व सिद्धांत की स्थापना के कुछ निश्चित प्रयोजन थे। राजमुकुट को एक उच्च और सम्मानित स्तर पर स्थापित करना। बलवन के विचार में चूंकि सम्राट ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतः उसका पद श्रेष्ठतम है। सुल्तान प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों को भी अच्छी तरह से समझता था। यद्यपि वह स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता का समर्थक था, किंतु यथासंभव वह इन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहता था। निरंकुश राजतंत्र शासन के फलस्वरूप और स्वेच्छाचारिता और अनियंत्रित सत्ता के कारण बलवन ने लौह और रक्त की क्रूर नीति अपनाई। बलवन शासन में कठोरता और ठोस नियंत्रण का समर्थक था। उसका दृढ़ विश्वास था कि विपक्षियों, विरोधियों और विद्रोहियों का दमन देश में शांति और सुरक्षा के हित में कठोर हाथों से किया जाना चाहिए। अगर वह यह नीति नहीं अपनाता तो उसके लिए सल्तनत में शांति और सुव्यवस्था स्थापित करना अथवा मंगोल आक्रमण से सीमांत सुरक्षा करना कठिन हो जाता। बलवन ने अपने राजत्व सिद्धांत की प्रेरणा स्वरूप और सार तत्व फारस से ग्रहण किया था। वहाँ राजत्व का चरमोत्कर्ष हो चुका था और जनता ने राजा की दैवी सत्ता को स्वीकार कर लिया था। वह वंशों की श्रेष्ठता और कुलीनता को अधिक महत्व देता था। वह उच्च कुल के व्यक्तियों से ही मिलता जुलता था और राज में पद तथा सम्मान देता था। उसने अपने राज दरबार का संगठन ईरानी ढंग और आदर्शों पर किया। दरबारियों के अनुशासन तथा शिष्टाचार के लिए नियम निर्धारित कर दिए गए। दरबार में अनुशासन पर विशेष बल दिया जाता था। इस प्रकार कठोर नियमों तथा रश्मों के द्वारा बलवंत ताज की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। गुलाम वंश के पतन के कारण। दिल्ली के आदि तुर्क सुल्तानों अथवा ममलुक वंश, गुलाम वंश जिसकी स्थापना ऐबक और इल्तुतमिश ने की थी तथा जिसने बलवन ने स्थायित्व एवं सुदृढ़ीकरण प्रदान किया था, 100 वर्षों के अंदर ही 1206 से 1290 समाप्त हो गया। बलवन के बाद उसके वंश में ऐसा कोई भी योग्य शासक नहीं हुआ जो सल्तनत को संभाल सके। इसके पतन के निम्न उत्तरदायी कारण थे। पहला, दिल्ली के सुल्तानों की विदेशी उत्पत्ति। दूसरा, उत्तराधिकार के नियम का अभाव। तीसरा, तुर्की शासन का स्वरूप। चौथा, दुर्बल एवं अक्षम सुल्तान। पांचवा, तुर्क अमीरों का शक्तिशाली बनना। छठा, राजपूत राज्यों का विरोध। सातवां, मंगोल आक्रमणों का प्रभाव। आठवां, अन्य महत्वपूर्ण कारण। उपरोक्त कारणों का गुलाम वंश के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका है। तुर्कों को अभी विदेशी और आक्रमणकारी माना जाता था, इसलिए राजपूत शासक तुर्कों की सत्ता समाप्त करने का सदैव प्रयास किया करते थे। तुर्की शासन का स्वरूप मुख्य रूप उसके सुल्तान और सैनिक अधिकारियों के हाथों में ही केंद्रित रहती थी। तुर्क अमीर और सैनिक पदाधिकारी सदैव षड्यंत्रों में लगे रहे। आरंभिक तुर्क सुल्तानों जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया में केवल इल्तुतमिश और बलवन के अतिरिक्त अन्य सभी शासक दुर्बल एवं अयोग्य थे। और भी अन्य कारण इसके पतन का कारण बना। इन कारणों में बलवन के अतिरिक्त अन्य किसी भी सुल्तान ने प्रशासनिक संगठन पर पूरा ध्यान नहीं दिया। शासक वर्ग का आपसी जातीय विद्वेष की भावना में लिप्त होना, ऐसी परिस्थितियों में तुर्की सुल्तान का पतन अवश्य भावी था। बलवन का कार्यकाल 1266 से 1286 ईस्वी तक का माना जाता है। 1266 ईस्वी में नसीरुद्दीन की मृत्यु होने पर बलवन सुल्तान बना था। उसके समक्ष कई कठिनाइयां थीं, किंतु उसने अदम्य उत्साह और प्रशिक्षण परिश्रम से सबको हल कर लिया।